SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल और आज हम बात करेंगे एनजैक दिवस की, जो ऑस्ट्रेलियाई इतिहास का एक अहम अंश है और हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। एनजैक डे पर ऑस्ट्रेलिया गैलिपली कैंपेन में मारे गए ऑस्ट्रेलियाई लोगों को और उन अन्य देशों के लोगों को याद करता है जो ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इतिहास बताता है कि लगभग 16,000 भारतीय सैनिक गैलिपली में एनजैक के साथ शामिल थे और इनमें से लगभग 1600 भारतीय सेनानी युद्ध में मारे गए। इस विषय पर न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर स्टैनली का तर्क है कि गैलिपली अभियान में भारतीय सेना की भागीदारी को आज भी सही स्थान नहीं मिल पाया है और काफी हद तक इसे भुला दिया गया है। इससे पहले प्रोफेसर स्टैनली ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल के लिए लगभग 3 दशकों तक काम किया था और उनकी किताब डाई इन बैटल डू नॉट डिस्पेयर द इंडियंस ऑन गैलिपली 1915 शायद पहली ऐसी किताब होगी जो गैलिपली में भारतीय सैनिकों के योगदान का गहरा वर्णन देती है।
I published Die in Battle, Do Not Despair in 2015, centenary, 100th anniversary of Gallipoli. But books take a long time to circulate, and even 9 years later, people are picking up on the story that I told. The book took a couple of years because I'd started work in 2013 as a research professor at UNSW Canberra, and that meant that I could focus on what I wanted to research, and I wanted to research Indians on Gallipoli. But I did that because I've been interested in Indians on Gallipoli for 30 years before that. So in a sense, the book took 2 years, and in another sense, it took 35 years.
What was the reason behind picking up a subject on Indian soldiers in Gallipoli?
I've always, since I was a teenager, I've been interested in India, and that's been one of the strands in my research. My PhD was on British soldiers in India in the 19th century. So I did that topic then. That research in order to travel to India. I've been to India a lot and I've done half a dozen books, 5-6 books on Indian military history. So I'd always been interested in India. And here my two interests coincided, my interest in British India and the work I'd done for 30 odd years on Australian military history just crossed over on Indians on Gallipoli. Gallipoli and war commemoration generally has always occurred within the context of national identity. So Australian war memorials tend to only talk about memorials. Australian books on military history tend to talk only about Australians. It hasn't really been since the 21st century where people started to notice that other countries were involved in these experiences too. So Gallipoli studies, as you might call it, became internationalized in the 21st century. And we started to see stories of both sides, Turkish, Ottoman Turkish, British Empire, and Australians and New Zealanders and British started to look at other people's experiences. So in a sense, the book Die in Battle came along as part of that trend where an Australian historian told an Indian story, partly because there are many more military historians in Australia than there are in India, but also the sources for Indian military history are largely not in India. And the sources I used, the Indian sources are vital, but most of the sources are actually in Britain, in London, the war diaries, and in Australia and New Zealand, the personal letters and diaries of soldiers that have been preserved. There are almost no personal records preserved in India. So I suppose if the story was to be told, it had to be told by somebody who wasn't Indian.
And I'm sure there are a lot of books about Gallipoli War, but is there any specific book on Indian soldiers' role in Gallipoli War apart from your own book?
There's beginning to be. Squadron leader Rana China of the United Services Institution of India, who works in New Delhi, he's researched and written about Australian Indians on Gallipoli. And there is now a book in press by a retired colonel of the Indian Army, which goes over that subject. There's no book in Pakistan, for example, that appears to, that deals with the experience of the Punjabi Muslim soldiers who were on Gallipoli, because there were Punjabi Muslims, Sikhs, and Gurkhas among mostly.
So technically there are only two books.
Yeah, a couple of books, maybe another one by the end of the year. But it's extraordinarily neglected. But it's understandable in one way. I mean, that the Gallipoli is a very small business for India. Mm. Gallipoli is really big for Australia, so it wouldn't be surprising that Australians focus on Gallipoli. And really, it's a specialist interest in India, and especially because the Indian Army was organised around ethnic groups. If you know, there were no troops in Maharashtra, there were no troops from Bengal, there were no troops from South India. Why would people from those parts of India be interested in the experiences of Sikh soldiers? So Indian military history, and indeed Indian history, is still very much focused on the community or the ethnic group, and not the national experience.
How important it is to tell the story of Indian soldiers.
I think it's important,
especially now when the diaspora is growing.
Yeah, exactly. That's one important reason that Indians are now such an important and growing part of Australia, that Australians ought to recognise that Indians are a part of what we've traditionally seen as Australian military history.
Yeah.
But Indians also, I think, are looking to feel a part of this significant part of Australia's history. It's also important, I think, for fairness, that they're all dead. They're all commemorated equally on Gallipoli. The Indians are named along with the British and Australians. But somehow in history, the Indians have missed out. And just my sense of fairness tells me that they ought to be accorded the respect of being acknowledged, at least.
रिटायर्ड कर्नल राजेश कासवां, जो इंडियन आर्मी के पूर्व अधिकारी रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहते हैं भारतीय सेना की भागीदारी के बारे में चर्चा करनी जरूरी है।
नमस्कार जी, मैं कर्नल राजेश कासवां, रिटायर्ड इन्फेंट्री से हूँ, सिख लाइट इन्फेंट्री। हमारे सभी सोल्जर्स बहादुर सरदार जवान होते हैं। मैं दिसंबर 1990 में कमीशन हुआ था और मैं बहुत ही लकी था कि मैंने फर्स्ट सिखलाई बटालियन कमांड करी। उसके बाद 20 साल के बाद मैं यहाँ पर मूव हो गया और ऑस्ट्रेलिया में अभी मैं परमानेंटली सेटल्ड हूँ। मैं रहता मेलबर्न में हूँ, लेकिन मैं काम क्वींसलैंड में करता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं किसी फंक्शन पर मेलबर्न में, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज से रिलेटेड होता है या एनजेक डे परेड वगैरह होती है, नहीं अटेंड कर पाता हूँ। हमारे लगभग 16,000 से भी ज़्यादा बहादुर सैनिकों ने वहाँ पर जो है अपने देश के लिए, अपने जिस फ्लैग के नीचे वो लड़ रहे थे उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे उनकी जो कैजुअल्टी रेट है वो एक सबसे ज़्यादा उनमें से था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये पब्लिक अवेकनिंग फैलेगी और इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो बहादुर जवान थे उनकी बैटल ऑफ गैलीपोली में उनका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाएगा और इससे हमें बहुत ही फख्र की बात होगी कि उनका कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज करें पब्लिक लेवल पर और अलग अलग फंक्शंस के दौरान। थैंक यू।
आई एम कर्नल विजय वासुदेव। 1979 से 2011 तक मैंने सर्व किया इंडियन आर्मी
जी,
इंडियन आर्मी के वेटरन में। फ्रैंकली एनजेक के बारे में 2018 से पहले मेरे को पता नहीं था। 2018 में मैंने सिडनी विजिट किया तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन वेटरन्स के, मेजर राजीव शर्मा, वो उन्होंने बैनर वगैरह बनवाया, उन्होंने मेरे को थोड़ा हिस्ट्री बताया, देन आई गॉट इंटरेस्टेड। फिर मैंने वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया सिडनी में एनजेक, तब मेरे को मालूम पड़ा एनजेक का इंडिया रिलेशनशिप क्या है।
जी।
पहले इसलिए नहीं मालूम चला बिकॉज पहले इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं थी। व्हाट आई फेल्ट कि हमें पहले पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता लगा। अभी इस पर मैं अपनी डॉटर को विजिट करने आया हूँ मेलबोर्न, तो इस पर मेरे को पता था, तो थोड़ा अभी यहाँ आके भी महसूस हुआ है कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। बट अभी भी जितना होना चाहिए आम सोल्जर को पता होना चाहिए बिकॉज उनको मालूम नहीं है, इंडिया में भी मालूम नहीं है। पूछते हैं एनजेक क्या है तो फिर बताना पड़ता है मेरे को। अभी मैं कुछ फ़ोटोग्राफ भी ले जा रहा हूँ यहाँ से, कुछ आप भी देंगे मेरे को फ़ोटोग्राफ, तो उससे मैं वहाँ जाके बताऊँगा अपने बैचमेट्स को, बाकी उनको कि यस क्या रिलेशनशिप है एनजक और इंडिया का और हमारे इंडियन सोल्जर्स का इसमें रोल है. 16,000 इतना पता लगा था कि पार्टिसिपेट किए थे, 1,600 वर डेड आल्सो, तो पता होना चाहिए सबको. थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है अभी.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.